आत्मा से रहित इस शरीर का जब कोई मूल्य नहीं, तो आध्यात्मिकता से रहित समाज का क्या मूल्य है? आत्मा से रहित शरीर जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे ही वो समाज नष्ट हो जाता है जिसमें आध्यात्मिकता नहीं। तो आइए, आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी आज हम चढ़े। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय दीदी जी से कि आज हमें इस राजयोग के प्रथम सत्र में स्वयं के अस्तित्व की पहचान कराए। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। राजनेताओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में राजयोग का शिक्षा बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि जो स्वयं का राजा बनता है वो ही विश्व पर राज्य कर सकता है। और राजयोग वो सहज विधि है जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि रूपी शक्तियों पर संयम प्राप्त कर सकते हैं। इस मायने में राजयोग सर्व योगों का राजा, क्योंकि इस योग का आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। यथार्थ योग तभी संभव है जब आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान हो, और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए यथार्थ योग तभी संभव है जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। यहां जो राजयोग सीखने आप जा रहे हैं, वो राजयोग कोई क्रिया नहीं है, शारीरिक या औपचारिक क्रिया नहीं है जो आप सीख लें और घंटा आधा घंटा करते रहे। यहां राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। इसलिए विद्यालय में केवल एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है। यहां योगी जीवन बनाने की बात है। इसलिए विद्यालय के पास 75 वर्षों के राजयोग के अनुभव हैं, जिसका सार 3 दिन के 3 सत्रों में आप प्राप्त करेंगे। इस योग अभ्यास के द्वारा हमें अपने जीवन में जो सुख, शांति, आनंद, शक्ति प्राप्त हुई है, वो शांति, वो सुख, वो आनंद, वो शक्तियां विश्व की सभी आत्माओं को भी प्राप्त हों, इसी लक्ष्य से हमारे हर कार्यक्रमों में राजीव का अभ्यास शामिल किया जाता है। हम राजीव का अभ्यास आरंभ करें उससे पूर्व हम योग शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं कि जैसे वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन, ऐसे योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन करना, रिलेशन जोड़ना। आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जोड़, संबंध। तो योग अभ्यास आरंभ करने से पूर्व तीन बातों का ज्ञान जरूरी है जो तीन सत्र में आप प्राप्त करेंगे। पहला है साधक, हम स्वयं कौन हैं। योग अभ्यास करने वाले साधक हम खुद कौन हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय चाहिए। दूसरा है साध्य, परमात्मा कौन है। जहां मन और बुद्धि एकाग्र करने हैं, जिनसे योग लगाना है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। और तीसरा है साधना, योग अभ्यास की पद्धति क्या है, किस रीति से योग लगाना है। आज के प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हम सभी अपने आप को शारीरिक रूप से जानते हैं। हमारा शारीरिक परिचय क्या है, इस दुनिया में जिस परिचय से हम पहचाने जाते हैं वो हमारा इहलौकिक, सांसारिक, दैहिक परिचय को हम जानते हैं। इसलिए आपस में जब मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो हम अपना दैहिक दुनियावी परिचय ही एक दो को बताते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूं, फलाने का बेटा हूं, मैं ये प्रोफेशन करता हूं। हमारी कॉन्शियसनेस में भी यही रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, बुजुर्ग हूं, काला हूं, गोरा हूं। स्पष्ट है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं, देहभिमान में आकर जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं। हमारा मेजोरिटी समय शक्ति धन बुद्धि देह के पीछे देह संबंधों के पीछे दैहिक दुनियावी प्रवृत्तियों के पीछे ही खर्च होता है। सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म हम करते हैं, अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करें तो आप पाएंगे कि कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम और रूप की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मिस्टर फलाना हूं, पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं सुंदर हूं, काला हूं, गोरा हूं। शरीर के नाम और रूप की कॉन्शियसनेस रहती है, संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं कि मैं इनका पति हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंध के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है, मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, और ये कॉन्शियसनेस इतनी बनी रहती है इवन रिटायर्ड हो जाने के बाद भी वो कॉन्शियसनेस बनी रहती है। और इसलिए हम कहते हैं कि मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं, एक्स मिनिस्टर हूं। हमें देह के जाति की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ब्राह्मण हूं, बनिया हूं, राजपूत हूं। धर्म की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं। इवन भाषा की कॉन्शियसनेस, मैं तमिल हूं, तेलुगु हूं, मराठी हूं। नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस, मैं अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं, जैपनीज हूं। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन बॉडी कॉन्शियस और सांसारिक बन चुका है। इसलिए प्रैक्टिकल हमारा अधिकतर समय शक्ति देह के पीछे दैहिक कार्यों के पीछे ही खर्च होता है। इसलिए जीवन के ऐसे स्वरूप में कोई आत्म कल्याण, स्व उन्नति, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की बात करते हैं, तो अक्सर हम क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। आत्म कल्याण आंतरिक विकास जीवन का वास्तविक ध्येय है जिसे हम भूल चुके हैं। तो हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं शरीर हूं, जिस देह और देह के पीछे, संबंधों के पीछे हम अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, क्या मैं शरीर हूं? क्योंकि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है, हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है जिसको हम कहते हैं कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए जब डेड बॉडी का अग्नि संस्कार करते हैं हम कहते हैं 5 तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया। मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, इसलिए शरीर भी एक साधन है। मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ हम देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, भोग्य हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवंत हैं, इस प्रकार शरीर भी जड़ है, नॉन लिविंग है। शरीर भी परिवर्तनशील है, आखिरकार नाशवंत है। जरूर शरीर से भिन्न कोई चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को धारण करती है, शरीर का उपयोग करती है। तो मनुष्यात्मा, ह्यूमन बीइंग कहने से 2 अस्तित्व स्पष्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा, जीवात्मा कहा जाता है। तो शरीर के बारे में हमें ज्ञान है क्योंकि शरीर स्थूल है, बाह्य है, तत्वों से बना है, इसलिए देह के बारे में ज्ञान है। लेकिन शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति है जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो मनुष्य आत्मा कहने से दो अस्तित्व स्पष्ट होते हैं, एक मानव शरीर और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा। जब तक वो चैतन्य शक्ति है, हम सोच सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, हम अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है, हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम तुरंत कहने लगते हैं कि जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो। तो प्रश्न आपसे ये है कि मैं कौन हूं? प्रतिदिन कितनी बार ये शब्द हम बोलते हैं, मैं और मेरा? लेकिन क्या हमें स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है? व्याकरण की दृष्टि से भी मैं अलग है, मेरा अलग है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? क्या मैं पांच तत्वों का बना हुआ जड़ शरीर हूं, या इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा? अगर गहराई से आप सोचते हैं तो आपको स्पष्ट बुद्धि में उत्तर आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, तत्वों से बना है, और मैं जड़ नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच सकती हूं, मुझे विचार चलते हैं। सोचना चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती, मैं सोचती हूं, मुझे इच्छाएं होती हैं, मुझे स्मृति रहती है, मैं कर्म करती हूं, मुझे अनुभव होते हैं, मुझे दूसरों के लिए सहानुभूति होती है। तो ये विचार, इच्छा, स्मृति, कर्म, अनुभव, सहानुभूति होना, ये सब चैतन्यता की निशानी है। स्पष्ट है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। देखने में शरीर आ रहा है, पर मैं शरीर नहीं हूं। जैसे भौतिक शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर देखने में नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होता है। इस प्रकार चैतन्य शक्ति आत्मा अति सूक्ष्म है, हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन चैतन्य शक्ति आत्मा ही विचार, इच्छा, स्मृति, कर्म, अनुभूति, सहानुभूति के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य है कि आप आत्मा हैं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद जीवात्मा मनुष्यात्मा कही जाती है। शरीर धारण करने के बाद आत्मा मस्तक में स्थित होकर बॉडी को चलाती है, क्योंकि ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है और आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर बॉडी को चलाती है। तो हमारी बुद्धि में ये मूल सत्य स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, ये स्पष्ट रहे शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है, मैं तो इस शरीर को धारण करने वाली शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा इससे चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान है। एक ड्राइवर दिन रात ड्राइविंग करता है, लेकिन वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है। उसे स्पष्ट है कि मोटर अलग है, मैं अलग हूं। इस प्रकार हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, मस्तक से सोचते हैं, लेकिन मैं मस्तक नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। हम कह सकते हैं कि शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं, मैं इस मकान से अलग इसकी मालिक हूं। शरीर एक ड्रेस है, मैं आत्मा इसे धारण करने वाली एक्टर इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं। गीता में शरीर को रथ कहा है, आत्मा को रथी देही कहा जाता है। इसलिए आत्मा निकल जाने के बाद डेड बॉडी को अर्थी कहते हैं। अर्थी माना जिसमें रथी नहीं है, आत्मा नहीं है। आत्मा को पंछी, शरीर को पिंजर कहा जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रथम सत्य, पहला पाठ, अपने आप को जानना, पहचानना। क्यों ये कहा जाता है? नो थाई सेल्फ, खुद को जानो तो खुदा को पहचान सकोगे। हम अपने आप को शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से जानते हैं, पर नो थाई सेल्फ माना क्या? अपने मूल, असली, अविनाशी, वास्तविक स्वरूप को जानने की बात है। और वो है हमारा अविनाशी आत्म स्वरूप, चैतन्य शक्ति स्वरूप, अविनाशी आंतरिक स्वरूप है। आत्मा मस्तक में स्थित होकर बॉडी को चलाती है, जिसकी यादगार भक्ति में हम भ्रकुटी में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। हम जानते नहीं हैं ये किसका प्रतीक है, एक रस्म है, कर लेते हैं। हर शुभ कार्य में भाई बहने सबको हम तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, यह अविनाशी आत्मस्मृति का प्रतीक है। लेकिन ज्ञान नहीं है इसलिए तिलक करते हैं, फिर भी बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस रूहानी नाते को भूल जाने के कारण, इस रूहानी दृष्टि को भूल जाने के कारण देहभान में आकर आज कितने भेद उत्पन्न हो गए हैं। जो भाईचारा, विश्व बंधुत्व हम चाहते हैं, वो सोल कॉन्शियस लेवल पर ही हो सकता। आत्मा अति सूक्ष्म है, चैतन्य है, इसलिए ज्योति बिंदु स्वरूप है। अति सूक्ष्म आकार बिंदु ही हो सकता है, ट्रायंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। जैसे शरीर के बारे में ज्ञान है कि शरीर पांच कर्मेंद्रियों से बना है, हाथ पांव आंख नाक कान मुख मिलाकर शरीर कहा जाता। ये फिजिकल ऑर्गन्स हम कहते हैं। सब मिलाकर शरीर कहा जाता है। आत्मा माना क्या? तो जैसे शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन बुद्धि संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि संस्कार के समूह को आत्मा कहा जाता है। इसलिए मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन बुद्धि कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है, आत्मा की चैतन्यता ही मन और बुद्धि है। इसलिए मन बुद्धि संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। अब मन माना क्या? मन किसको कहते हैं? मन शब्द से परिचित हैं हम। हम कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है। मन की शांति नहीं है। परमात्मा की याद के लिए बैठते हैं, मन भटक जाता है। तो मन किसको हम कहते हैं? मन भटकता है माना क्या होता है? क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो निकल कर भटक जाती। मन भटकता है माना क्या होता है? हाँ, विचार चलते हैं। बैठे हैं कोई एक सब्जेक्ट सोचने पर अन्य अनेकानेक विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है। तो स्पष्ट है आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं, आत्मा की संकल्प शक्ति मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है विचार उत्पन्न करना। अब तक बॉडी कॉन्शियस रहे इसलिए मन का अधिक उपयोग हमने शरीर चिंतन, सांसारिक चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन में ही अधिक उपयोग किया। हम अपने जीवन को ऑब्जर्व करें। प्रतिदिन मन को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हमें अधिक विचार कौन से चलते। अक्सर चिंतन किस बातों का चलता है? वही नौकरी, धंधा, समाज, संसार, शरीर, परिवार, वही बातें सोचते हैं ना। अब हमें मन को स्वचिंतन, आत्मचिंतन में लगाना है। परमात्मा चिंतन शुभ चिंतन श्रेष्ठ चिंतन में लगाना है। तो राजयोग में हम ये कहते हैं कि मन को विचार शून्य नहीं हम कर सकते, क्योंकि मन का कार्य ही सोचना है। इसलिए विचार ही न चले ये नहीं हो सकता है। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। हठ क्रियाओं से मन का दमन नहीं करना है। राजयोग में हम मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाते हैं। इसलिए चिंतन को बंद नहीं कर सकते हैं, चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए अब व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, नकारात्मक चिंतन, सांसारिक चिंतन से मन को हटाकर स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन में हमें लगाना है, ताकि हम मन को शुद्ध बना सके, विचारों को सकारात्मक, शुद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ बना सके। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना। विचार अनेक चलते हैं, सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। विचार अनेक चलते हैं पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन घोड़े के समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लेकिन आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि बुद्धि पतित कमजोर बन गई है। इसलिए मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम कहते भी हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट संसार बन गया है। इसलिए बुद्धि कमजोर है, पतित है, मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए बुद्धि का योग परमात्मा से लगाने की आवश्यकता है, ताकि बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और सत्य बना सके। कहीं सोचते हैं परमात्मा को याद करने की क्या आवश्यकता है, क्यों भगवान से योग लगाना है? क्योंकि परमात्मा ही वो परम शक्ति है जो सदा पावन है, ऑलमाइटी है, परमात्मा की याद से बुद्धि शुद्ध सत्य शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए हम गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। क्यों परमात्मा को कहते? जरूर परमात्मा से कभी बुद्धि सत्य हुई है तब तो हम उसे याद करते हैं। इसलिए बुद्धि को प्यूरिफाई करने, एम्पावर करने के लिए, बुद्धि को डिविनाइज करने के लिए हमें बुद्धि का योग, बुद्धि का फोकस परमात्मा के प्रति करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, खुलेआम करते हैं या छिपकर करते हैं, लेकिन हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। और बार 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 ऐसे कर्म करते रहने से कर्म का प्रभाव दृढ़ होता जाता है, जिसे स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है, जिसको स्वभाव संस्कार हैबिट्स टेंडेंसी कहते हैं, सबकॉन्शियस जिसको हम कहते हैं। और हम जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ साथ नहीं ले जाती है, लेकिन आत्मा क्या साथ ले जाती है? जीवन भर किए हुए कर्मों का हिसाब संस्कार के रूप में आत्मा साथ ले जाती। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है, फिर से ऐसी ही जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमें कर्म पर अटेंशन देने की जरूरत है। हम कर्म करते हैं, ध्यान नहीं देते। हम घंटों व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कर्मों में लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कर्म ही संस्कार बनते हैं। हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब करते हैं तो अटेंशन नहीं देते। जब कर्म फल भोगते हैं तब हम सोचते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आती है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर करते हैं तब अटेंशन नहीं देते। इसलिए अगर हम संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें कर्म व्यवहार को सुधारना होगा। हमें कर्म व्यवहार को सुधारना होगा, बिहेवियर को चेंज करना होगा। और अगर हम अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं। पुनः जैसे संस्कार ऐसे ही विचार बार बार आते हैं। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन की आवश्यकता है। हम अपने वर्तमान संस्कारों को ऑब्जर्व करें, दूसरों को तो हम ऑब्जर्व करते हैं, रिमार्क्स भी देते हैं, ये बड़ा अभिमानी है, ये झूठा है, ये प्रपंची है, ये क्रोधी है, दूसरों की पर्सनालिटी के लिए तो रिमार्क्स देते, खुद के संस्कारों को चेक करें। हमारे स्वभाव संस्कार कितने स्पॉइल हो गए, हम कहते भी है मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है, इनकी वृत्ति ही ऐसी है, कहते हैं कि नहीं। एक दो के सामने तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, झूठा अभिमान जो है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं, पवित्र देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, महान व्यक्तियों से जब हम मिलते हैं, हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं। इसलिए आरती भजनों में, प्रार्थना में हम स्वीकार करते हैं, हम गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं कि नहीं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपटी हूं, मौसम कुटी नल न कोई, हम गाते हैं। बेशक आज हम सभी आत्माएं कम ज्यादा मात्रा में कोई ना कोई विकार, व्यसन, बुराई के वशीभूत हो गए। हर एक आत्मा आज दुखी है, अशांत है, पतित है, तमो प्रधान है। लेकिन हम फिर से क्या बनना चाहते हैं, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। बेशक आज हरेक आत्मा कामी, क्रोधी, लोभी, अभिमानी, प्रपंची, दुखी, अशांत बन गई है, लेकिन यहां एक और सत्य समझने की आवश्यकता है कि आत्मा ओरिजिनली पतित नहीं है, प्रत्येक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, पवित्र है। हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है, इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए। क्यों हरेक को जीवन में शांति चाहिए? क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से शांत है। देहभान में आकर गुस्सा हम करते हैं, जैसे पानी अग्नि के संग गर्म हो जाता है, उबलता है। अग्नि से दूर कर दो, फिर से पानी शीतल होने लगता है, क्योंकि पानी की असलियत शीतलता है। पानी का गुण धर्म शीतलता है। ऐसे हम आत्माएं देहभान में आकर गुस्सा करते हैं, लेकिन आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से क्रोधी नहीं है, शांत स्वरूप है। इसलिए जैसे ही देहभान से डिटैच होते हैं, हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, तो शांत होने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, माना मुझे गुस्सा आता है और जाता है, आ जाता है, आता है और जाता है। आखिर क्या रहता है? आखिर क्या होता है? शांत हो जाते। गुस्सा करके भी आखिर इंसान शांत हो जाता है ना, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी शांति है। हम कहते भी हैं कि अब आपका मिजाज शांत हुआ, अब आपसे बात करें, आत्मा की ओरिजिनलिटी शांति है। इसलिए अब हम ये स्मृति रखेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसलिए हमें शांति चाहिए। हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? क्या चाहिए? सुख, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है, इसलिए हमें सुख चाहिए। हमें जीवन में सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्यार करे वो अच्छा लगता है। हर आत्मा को प्यार चाहिए। शरीर से युवा है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर आत्मा को प्यार चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, कोई उदास, निराश, हताश रहे वो हमें पसंद नहीं आता है ना? हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करते, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर आनंद स्वरूप है। इसलिए दुख के दिन जल्दी पूरे करने चाहते हैं, सुख के हर क्षण एंजॉय करना चाहते हैं। तो प्रत्येक आत्मा के असली गुण धर्म है शांति, सुख, आनंद, प्रेम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप, आनंद, प्रेम स्वरूप। इसलिए सुख, शांति, आनंद बाहर नहीं खोजने हैं, मैं आत्मा इन गुणों का स्वरूप हूं। क्यों कहते हैं शांति के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, भीतर जाने की आवश्यकता है, माना आत्मा स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति, सुख, आनंद, प्रेम आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। इसलिए शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। सुख साधनों में नहीं है, धन साधन वैभव का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो अपार वैभव के बीच महलों में भी सुख अनुभव नहीं होता है। आनंद पिक्चरों में, होटलों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। अगर मुझे खुशी नहीं है तो कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी में फील हो, मुझे मजा नहीं आता है। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मुझ आत्मा में ही समाया हुआ है। मुझे सोल कॉन्शियस, आत्मभिमानी बनने की आवश्यकता। हमें स्वच्छता, पवित्रता, सच्चरित्रता अच्छी लगती, हमें गंदगी, विकार, बदचलन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा शुद्ध पवित्र स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। इसलिए विकार, बुराई, गंदगी, बदचलन अच्छी नहीं लगती है। हम सदा ज्ञान पाने की कोशिश करते, अज्ञान मिटाते रहते हैं। हमें हर चीज जानना, सीखना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें शक्तिशाली, बहादुर, हिम्मती, साहसी लोग पसंद है, कमजोर, कायर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आत्मा शक्ति स्वरूप है। ये है आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज, ये है हमारी ओरिजिनल नेचर, असली गुणधर्म। इसलिए जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, मन शांत होने लगेगा, आप स्व में केंद्रित होने लगेंगे, हमें स्वयं में आनंद अनुभव होता है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना। अगर हम योगी बनना चाहते हैं, हमें दुनिया छोड़ने की आवश्यकता रहे। अक्सर हम समझते हैं कि हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, हम योगी कहां बन सकते हैं। लेकिन नहीं, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें योगी तपस्वी बनना है तो दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देहभान छोड़ने की आवश्यकता है, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है, सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है। और देहभान मिटाने के लिए देह का दमन करने की जरूरत नहीं, कर्मेंद्रियों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। हम आंख बंद कर लेते हैं, हठक्रियाएं करते हैं, उपवास करते हैं, मौन कर लेते हैं, हमें कर्मेंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं है। देहभान मिटाना चाहते हैं तो सिंपल मेथड है खुद को आत्मा समझने की आवश्यकता है। आत्म विस्मृति के कारण बॉडी कॉन्शियस बने। हमें सिंपली आत्म स्मृति में रहने की आवश्यकता है, स्वचिंतन करने की आवश्यकता है। और लास्ट बात कि इस प्रकार हम आत्माएं इस मनुष्य लोक में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं, हमारे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, इन आंखों से जो संसार आप देख रहे हैं, ये साकार मनुष्य लोक है, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, स्थूल वतन ये तत्वों से बना है। आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, इसलिए इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये हमारा घर नहीं है। हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए हैं शरीर रूपी ड्रेस पहनकर, वैरायटी रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम कहते हैं विश्व नाटक है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के पार्ट धारी हैं। हम कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, जीवन यात्रा है, आत्मा को मुसाफिर कहते हैं। हमारा असली घर इस दुनिया से दूर है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है? चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से जो दिखाया है वो हमारा असली घर परमधाम शांति धाम है, जिसको परलोक ब्रह्मलोक कहते हैं। ये पांच तत्वों की बनी हुई दुनिया है, इन पांच तत्वों से पार प्रकृति का छठवां तत्व है अखंड लाल ज्योति तत्व, ब्रह्म तत्व जिसे कहते हैं। जहां हम आत्माएं अपने ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में स्थित है, वो आत्माओं की दुनिया है, रूहों की दुनिया, सोल वर्ल्ड है। वहां हमें शरीर नहीं है, इसलिए वहां कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है, इसलिए उसे शांति धाम कहते हैं। ये आवाज की दुनिया है, ये टॉकी वर्ल्ड है, वो साइलेंस होम है। वहां अखंड लाल ज्योति तत्व, ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, इसलिए ब्रह्मलोक कहते हैं। इस दुनिया से पर है, इसलिए परलोक कहते हैं। आत्मा वाणी से पर है, निर्वाण स्थिति में, वाणी नहीं, आवाज नहीं। आत्मा शरीर के बंधन, प्रकृति के बंधन से मुक्त है, इसलिए मुक्ति धाम कहते हैं। वो हमारा असली घर है। यहां हम आए हैं शरीर धारण कर कर्म करने, कर्म फल भोगने। इसलिए जीवन क्या है? कर्म करना, कर्म फल भोगना। इस दुनिया में रहते हुए अगर हमें ये याद रहे कि ये हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, हम यहां रोल प्ले करने आए हैं, तो हम इस दुनिया में रहते भी दुनिया से डिटैच रह सकते हैं, हम न्यारे रह सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस है कि ये घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। और इस देह में रहते, देह द्वारा कर्म करते, अगर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, तो देहभान से डिटैच रह सकते हैं। इसलिए राजयोग का प्रथम अभ्यास है खुद को आत्मा समझना, आत्म स्मृति में रहना, आत्म दृष्टि से देखना, आत्म चिंतन करना, वो है पहला अभ्यास। क्योंकि जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे, हम गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकते। देहभान में रहेंगे, देह के मित्र संबंधी दुनिया के विचार आएंगे, आत्मभान में रहेंगे तो मन अंतर्मुखी बनेगा, नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। इसलिए राजयोग का फाउंडेशन आत्मचिंतन है। तो हम 5 मिनट स्वचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। अपना डायरी, पर्स, फाइल साइड में रख दें। आंखें स्वाभाविक खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। हम आत्मस्मृति में स्थित रहकर स्वचिंतन का अभ्यास करेंगे। क्या चिंतन करना है मैं विचार देती जाऊंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन से फॉलो करना है। जो विचार मैं दूं आप मन में रिवाइज करें, उसके अर्थ में स्थित हो जाए। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं, मुख द्वारा बोलती हूँ, कान द्वारा सुनती हूँ, लेकिन मैं आँख नहीं हूँ, मुख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, मैं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। मेरे लिए यह शरीर केवल एक साधन है कर्म करने के लिए। इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन शरीर भान में नहीं आना है। जीवन का साध्य आत्मकल्याण है। मुझे शरीर द्वारा वो कर्म करने हैं जिससे मुझ आत्मा की उन्नति हो। मैं आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है। यह सृष्टि रंगमंच है। मैं इस वर्ल्ड ड्रामा की अविनाशी एक्टर आत्मा हूं। शरीर ड्रेस है, वैरायटी रोल्स मैं प्ले करती हूं, लेकिन मैं ये रोल्स नहीं हूं। मैं शरीर ड्रेस नहीं हूं, मैं आत्मा एक्टर हूं। मेरा असली घर शांति धाम है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शीतल स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं शांत और स्थिर हूँ। मैं आत्मा आनंद प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सात गुणों का सार हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। मैं आत्मा शाश्वत सनातन हूँ। मैं आत्मा हूँ। ईश्वरीय संतान हूं, मैं शुद्ध शांत शक्ति स्वरूप हूं, ओम शांति।